समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
मैं जो बोलूँ हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूँ ना तो ना।
बिल्कुल सही है, एक बोले दूसरा माने और दूसरा कहे और पहला माने। इसी तरह तो रिश्तों में एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान और मजबूती आती है और रिश्ता लंबे समय तक चल पाता है। या यूं कह लीजिए कि शब्दों की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। एक छोटी सी हाँ और एक छोटी सी ना जीवन रूपी रिश्ते की परिभाषा को बदलने की ताकत रखती है। इसी सुविचार के साथ एक नई सोच, एक नई ऊर्जा और एक नए एहसास के साथ आइए शुरू करें समाचार पत्रिका कार्यक्रम आज सवेरे। श्रोताओं के स्वागत के लिए आज तैयार हैं आप ही के अपने रवि कपूर और शगुन चोपड़ा। तो स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार।
नमस्कार रवि, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। आई एम शगुन चोपड़ा विद माय को होस्ट रवि। वेल, एज रवि सेड, इट्स अ न्यू डे एंड विद न्यू बिगिनिंग्स एट दिस अर्ली इन द मॉर्निंग वी विल बी प्रोवाइडिंग यू विद व्हाट्स लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज। ऑल्सो वी विल बी शेयरिंग मेट्रो सिटी अपडेट्स विद यू एंड व्हाट्स मोर वी विल बी एक्सप्लोरिंग द हिस्ट्री ऑफ टुडे। That is 23rd of December, so stay tuned and stick around till the end, listeners. Lots of interesting stuff is coming for you all. We'll begin with the headlines first, shall we?
बिल्कुल शुरू करते हैं सिलसिला मुख्य समाचारों का।
Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 71,000 appointment letters to newly appointed recruits today through video conferencing. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rose Gar Mela will be organized at 45 locations across the country.
The Rose Gar Mela was launched in October 2022 and 13 such melas have been organized at national level in 50 cities so far. Lakhs of appointment letters have been issued to youth in these melas, marking a step toward filling the vacant posts in various government departments and ministries. The new recruits will join the ministries and departments like Home Affairs, Post, Higher Education, Health and Family Welfare, Financial Services, among others. Rose Gar Mela is a step toward fulfillment of the commitment of the Prime Minister to accord highest priority to employment generation amongst youth. It is providing meaningful opportunity to the youth for their participation in nation building and self-empowerment. Bhupen Singh, Akashwani News, Delhi.
भारत और कुवैत ने सीमा पार से आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा की है। दोनों देशों ने आतंक के सुरक्षित ठिकानों और इसके लिए वित्त पोषण नेटवर्क ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत यात्रा के दौरान आतंकवाद से निपटने के उपायों, साइबर सुरक्षा और कट्टरवाद की रोकथाम में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श हुआ। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य के अनुसार दोनों देशों ने आतंकवाद पर अंकुश लगाने के प्रयास में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देश कानून लागू करने, धन शोधन और मादक पदार्थों की रोकथाम और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने में सहयोग के लिए भी सहमत हुए। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के नए सदस्य के रूप में कुवैत का स्वागत किया और संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर दोनों देशों के बीच उत्कृष्ट समन्वय की सराहना की।
मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस डॉ जितेंद्र सिंह विल इनॉग्रेट द नेशनल वर्कशॉप ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेज इन न्यू दिल्ली टुडे। ऑफिशियल्स फ्रॉम ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स विल पार्टिसिपेट इन द वर्कशॉप। Dr. Singh will also inaugurate an exhibition on best practices of the Swachhata Campaign 4.0, curated by different ministries and departments, along with the release of the assessment report. On the occasion of the 4th Good Governance Week, Prime Minister Narendra Modi, in his message, said that good governance holds the key to the nation's progress. He added that it is a vital aspect to provide a transparent, efficient and accountable administration that works for the overall welfare and betterment of people.
विदेशी निवेशकों ने दिसंबर माह में अब तक भारतीय पूंजी बाजारों में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। आंकड़ों के अनुसार भारतीय शेयर बाजारों में 21,789 करोड़ रुपए और ऋण बाजार में 4,646 करोड़ रुपए लगाए गए। इस प्रकार भारतीय पूंजी बाजारों में दिसंबर में अब तक कुल 26,435 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश हुआ है। पिछले कुछ महीनों में विदेशी निवेश का आउटफ्लो अधिक रहा है। नवंबर महीने में विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजारों से 21,612 करोड़ रुपए और अक्टूबर में 94,017 करोड़ रुपए निकाले थे, जबकि सितंबर महीने में विदेशी निवेश का इनफ्लो 9 महीने के उच्चतम स्तर पर 57,724 करोड़ रुपए था। इस वर्ष अब तक विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजारों में 6,770 करोड़ रुपए और ऋण बाजारों में 1,11,704 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस प्रकार वर्ष 2024 में भारतीय पूंजी बाजारों में कुल विदेशी निवेश लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए हो गया है।
Prime Minister Narendra Modi will attend the Christmas celebrations in New Delhi today. The event is being hosted by the Catholic Bishops' Conference of India. The Prime Minister will interact with key leaders from the Christian community, including cardinals, bishops and prominent lay leaders of the church. This is the first time the Prime Minister will attend such a program at the headquarters of the Catholic Church in the country.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई अड्डे पर किफायती दरों पर भोजन और पानी जैसी बुनियादी जरूरतें उपलब्ध कराने के लिए उड़ान यात्री कैफे शुरू करने की घोषणा की है। अपनी तरह के इस अनूठी पहल को प्रायोगिक आधार पर कोलकाता हवाई अड्डे पर शुरू किया जा रहा है। इसके सफल हो जाने पर भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण इन्हें देश भर में अन्य हवाई अड्डों पर भी आरंभ करेगा। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहले उड़ान यात्री कैफे का शुभारंभ के साथ ही विमान यात्रियों को पानी की बोतलें, चाय, कॉफी और स्नैक्स जैसी जरूरी चीजें सस्ती दरों पर मिल सकेंगी।
Now let's focus on the happenings in the sports world. Pakistan Cricket Board has confirmed the United Arab Emirates UAE as the neutral venue for India's matches in the 2025 ICC Champions Trophy. We have a report.
Following India's refusal to travel to Pakistan due to security concerns, the PCB has designated the UAE as the neutral venue for India's matches in Best of 8 tournament. While the PCB did not specify the exact location, Dubai is widely expected to host the matches. India has three group stage games in the tournament, including a highly anticipated clash with Pakistan. Should India advance, the UAE will host one of the semi-finals and the final. In more cricket news, Indian opener Smriti Mandhana set a new milestone in women's cricket last evening after scoring 91 runs against the West Indies in the first ODI in Vadodara. The match-winning innings pushed her 2024 tally across all formats to 1,602 runs, surpassing South Africa's Laura Walwart's record of 1,593 runs for the most international runs in a calendar year. Mandhana achieved the feat in just 36 matches. With two ODIs left against the West Indies this year, she has the chance to further extend her record-breaking run. Meanwhile, in the match, India dominated the West Indies, securing a commanding 211-run victory in the first ODI of the three-match ICC Championship Series. Chasing a target of 315 runs, the West Indies were bowled out for just 103. In tennis, Yao Fonseca of Brazil triumphed over Leonard Tian of the United States in a four-set showdown to win the 2024 Next Gen ATP Finals title in Jeddah, Saudi Arabia. At just 18 years old, Fonseca became the second youngest champion in the tournament's history following Yannick Sinner's victory in 2019. With this win, Fonseca also became the first Brazilian to win the title and the lowest ranked player to do so in the tournament's 7-year history. Manik Sharma, Akashwani News, Delhi.
तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार। और अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचारों की जानकारी दे रही हैं शगुन चोपड़ा।
Yes, Ravi, in this segment we will focus on Chennai first. The lawyers from Delhi, Uttar Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu and Puducherry are participating in the 27th All India Lawyers Cricket Tournament from 21st to 26th of this month in Chennai. The tournament, which began in 1998, has grown from 4 teams to 12, providing a platform for lawyers to showcase their cricketing skills and network nationally. Chennai Advocates Cricket Association President M. Velumurugan said that the tournament was hosted at Pune International Stadium and Firoz Shah Kotla Stadium over the years. staying with Chennai, the Directorate of Elementary Education will train teachers in creating customized assessments using digital tools to meet the diverse learning needs of primary school students. This training will help teachers design mock question papers and revision modules tailored to different abilities. An online platform and messaging groups are being launched to encourage the exchange of innovative assessment practices. According to the State Planning on Literacy Project on Numeracy and Literacy Programs, teachers question the effectiveness of existing digital assessments. Now let's turn our attention to Bengaluru. Indian Space Research Organization and the European Space Agency have signed an agreement for collaboration in the areas of astronaut training, mission implementation and research experiments. Following the agreement, the astronauts from India and Europe will travel in space to the International Space Station under the upcoming Axiom 4 mission. The mission, scheduled in April next year, will use the SpaceX Crew Dragon spacecraft that is a US-based private space infrastructure developer. Two Indian astronauts are likely to travel to the space station and return after 14 days. Apart from this, both the agencies will work together in human physiological studies, technology demonstration, experiments, as well as educational outreach activities. Moving on to Hyderabad now. Tension erupted at Tollywood actor Allu Arjun's residence in Jubilee Hills yesterday as members of the Osmania University Joint Action Committee, OUJAC, staged a protest demanding justice for Revati's family, who lost her life in a stampede during a benefit show for Pushpa 2 at Sandhya Theatre on December 4. The protest escalated when JAC leaders forcefully entered the premises, vandalizing flower pots and pelting stones at the actor's residence. Police reached the spot and beefed up security outside the actor's house. DCP West Zone Vijay Kumar said 6 persons were taken in custody. So these were the updates from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Now Ravi will be sharing the updates from Delhi, Mumbai and Kolkata.
Bilkul Shugun, nazar dal lete hain Rajdhani Delhi, Mumbai aur Kolkata ke samacharon par. Aur shuruaat karte hain Delhi se. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कल एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों में पीने के पानी की कमी, विद्युत आपूर्ति न होने और सीवरों के खस्ताहाल का मुद्दा उठाया। श्री सक्सेना ने बताया कि उन्होंने स्थानीय निवासियों के अनुरोध के बाद दक्षिणी दिल्ली के रंगपुरी पहाड़ी और दक्षिण पश्चिम दिल्ली के कापसहेड़ा के सांसद रामवीर सिंह विधोड़ी के साथ दौरा किया था, जहां उन्हें लोगों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के कई इलाकों में बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। श्री सक्सेना ने कहा कि राजधानी में लोगों के दयनीय जीवन को देखना बेहद निराशाजनक और परेशान करने वाला है। इस दौरान उपराज्यपाल ने अधिकारियों को इन इलाकों के मुद्दों को तत्काल हल करने का सुझाव दिया। वहीं उपराज्यपाल के दौरे के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी रंगपुरी पहाड़ी क्षेत्र पहुंची। इस दौरान उन्होंने वहां मूल सुविधाओं के अभाव का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार शहर की हर समस्या का समाधान करेगी। दूसरी ओर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर नागरिकों की समस्याओं को जानने के लिए उनकी सराहना की। श्री यादव ने कहा कि अगर दिल्ली के उपराज्यपाल गरीबों के हकों और अधिकारों की बात करेंगे तो दिल्ली की जनता को आगामी विधानसभा चुनावों में अपने मत का निर्णय लेने में आसानी होगी। शगुन, अगली जो खबर है वो कला मेले से संबंधित है और हम सब जानते हैं कि इस तरह के जो कला मेला लगते हैं वो कितने प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि उनमें परंपरागत उत्पादों का जो है वो प्रदर्शन किया जाता है।
एग्जैक्टली।
तो नई दिल्ली के इंडिया गेट पर आयोजित 22वें दिव्य कला मेले का कल समापन हो गया। इस मेले में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 100 दिव्यांग उद्यमी और कारीगरों ने अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन किया। दिल्ली के अलावा फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा से भी बड़ी संख्या में आगंतुक दिव्यांगजनों की प्रदर्शनियों को देखने के लिए पहुंचे। मेले के अंतिम दिन हस्तक्षेप, हथकरघा, कढ़ाई के काम, पर्यावरण अनुकूल स्टेशनरी, विभिन्न प्रकार के आचारों, लकड़ी और धातु निर्मित लालटेन, कश्मीरी वस्त्र और जीवन शैली से जुड़े सामान जैसे स्टॉलों पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। मेले में आगंतुक देश के विभिन्न क्षेत्रों के व्यंजनों का स्वाद लेते हुए भी नजर आए। मेले में दिव्यांग कलाकारों द्वारा संगीत, नृत्य और अन्य कलाओं में मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी गईं। बढ़ते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन कल रविवार को मुंबई के सायन स्थित श्री शरण मुखानंद ऑडिटोरियम में दादर स्थित शारदाश्रम विद्या मंदिर स्कूल के 75वें वार्षिकोत्सव समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कक्षा 10 के मेधावी विद्यार्थियों और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर शारदाश्रम विद्या मंदिर स्कूल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ राजन गुप्ते व ट्रस्ट के अन्य अधिकारी मौजूद थे। महाराष्ट्र के पालघर जिले में खानवली ग्राम पंचायत ने गांव में प्लास्टिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक अभिनव पहल शुरू की है। इस पहल के बारे में बात करते हुए खानवली के सरपंच भरत हजारे ने कहा कि गांव प्रशासन ने सीएसआर फंड का उपयोग करके एक पीईटी बोतल श्रेडर मशीन खरीदी है। इस मशीन का उपयोग बेकार प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा करने और कुचलने के लिए किया जाता है। गांव की दो महिलाओं को मशीन चलाने का प्रशिक्षण दिया गया है। कुचले गए प्लास्टिक का उपयोग फिर फ्लेक्स बनाने के लिए किया जाता है, जिन्हें बाजार में बेचा जाता है। इन फ्लेक्स को बाद में नई बोतलें बनाने के लिए रिसाइकिल किया जाता है। श्री हजारे ने कहा कि ग्राम पंचायत एक ऐसे संगठन से प्लास्टिक की बोतलें खरीदने की योजना बना रही है जो गांव के भीतर एकत्र की गई प्लास्टिक की बोतलों के अलावा कुडूस, वडावली और चिंचघर जैसे गांवों से प्लास्टिक कचरा एकत्र करता है। चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर। कोलकाता के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर इस सर्दी में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। दो दिनों की बारिश के बाद शहर में धूप और साफ आसमान की वापसी हुई है। रविवार को अलीपुर जूलॉजिकल पार्क में 68,000 पर्यटक आए, जो इस महीने के पिछले 40,000 के आंकड़े को पार कर गया है। इसके अलावा कोलकाता में भारतीय संग्रहालय, विक्टोरिया मेमोरियल, बिरला प्लेटेनेरियम, ईडन गार्डन और अन्य जगहों पर भी लोग जा रहे हैं। वैसे दिल्ली में भी शगुन, जब धीरे धीरे जैसे मौसम साफ होगा तो दिल्लीवासी भी घूमने निकलेंगे और अच्छे मौसम का लुत्फ उठाएंगे।
एंजॉइंग द सनी डेज।
बिल्कुल, सबको इंतजार है उन दिनों।
एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर देम।
तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और शगुन के साथ, और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की। तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मौसम। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सामान्यतः बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना है। तो अपना ध्यान रखिएगा आप शगुन।
जी बिल्कुल।
आज का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में धुंध के साथ बादल छाए रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अगर हम कोलकाता की बात करें तो वहां भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
Well, Ravi, it's much the same in other metro cities as well, the partly cloudy sky that you've been talking about.
Jee.
Chennai is also expected to have generally cloudy sky with light rain, right?
Jee.
The minimum temperature was 24 degrees Celsius and maximum will be around 31 degrees. Bengaluru is expected to have fog and mist in the morning and partly cloudy sky later in the day. The minimum temperature was 18 degrees Celsius and maximum will be around 28 degrees. Now talking about Hyderabad, it is expected to have partly cloudy sky, becoming generally cloudy towards afternoon or evening or in the night. The temperature will hover between a minimum of 18 degrees and a maximum of 31 degrees Celsius.
बिल्कुल, लेकिन शगुन देखिए, हर मौसम का ना अपना ही एक आनंद होता है, तो मेरा मानना यह है कि हर मौसम का आनंद भरपूर लेना चाहिए।
Yes, no matter what the weather is, no matter what the weather or the season that's going on, we should always enjoy, right?
बिल्कुल। और अब बारी है इतिहास के पन्नों को पलटने की, तो पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ। लेकिन शगुन, उससे पहले हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि आज राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है।
मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती,
मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
बैलों के गले में
किसान दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती 23 दिसंबर को मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह किसानों के सर्वमान्य नेता थे। उन्होंने भूमि सुधारों पर बहुत काम किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में और केंद्र में वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने गांवों और किसानों को प्राथमिकता में रखकर बजट बनाया था। उनका मानना था कि खेती के केंद्र में हैं किसान, इसलिए उनके साथ कृतज्ञता से पेश आना चाहिए और उनके श्रम का प्रतिफल अवश्य मिलना चाहिए। किसान दिवस राष्ट्र की प्रगति में किसानों के योगदान को सम्मान देने का अवसर है। किसान दिवस खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और देश की कृषि विरासत के संरक्षण में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका का स्मरण कराता है। किसानों की भूमिका को महत्व देते हुए सरकार ने उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए अनेक पहल की हैं। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शामिल हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत किसानों को वित्तीय सुरक्षा, जोखिम कम करने के उपाय और दीर्घावधि सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इस वर्ष देश में 33 करोड़ 22 लाख टन अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। पिछले वर्ष ये 32 करोड़ 97 लाख टन था।
Well, Ravi, the National Farmers Day honors the contributions of farmers to the nation's growth and development. And in this regard, Vice President Jagdeep Dhankar said that agriculture is the spine of rural development, and until the rural landscape changes, the country cannot aspire to be a developed nation. He said this during an interaction with the recipients of the Chaudhary Charan Singh Awards 2024 in New Delhi.
Agriculture is the spine of rural development. Unless agriculture develops, rural landscape cannot be changed. And unless rural landscape changes, we cannot aspire to have a developed nation.
Mr. Dhankar said that the village economy can look up only when the farmer and their family are involved in marketing, value addition and generating clusters to become self-sufficient. The Vice President lauded the extraordinary legacy of Chaudhary Charan Singh, emphasizing his relentless dedication to rural development, farmers' welfare and inclusive growth.
A person who encapsulates transparency, accountability, integrity, commitment to rural development, commitment to farmer, and was all throughout fearless in expression of his views. So the Charan Singh is defined by sublimity, statesmanship,
उपराष्ट्रपति जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी जानकारी दी है उन्होंने। और आइए अब पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को।
फर्स्ट रवि, लेट्स टेक आवर लिसनर्स वे बैक इन टाइम। इन द ईयर 1672 एस्ट्रोनॉमर जोवानी कैसिनी डिस्कवर्ड सैटर्न सैटेलाइट रिया। Satellite Rhea was discovered. In the year 1690, just a bit ahead of 1672, the philosopher John Flamsteed saw the planet Uranus and considered it a star and named it 34 Tauri.
1894 में आज के दिन रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में पूस मेले का उद्घाटन किया। 1901 में आज के दिन शांति निकेतन में ब्रह्मचर्य आश्रम को औपचारिक रूप से खोला गया। 1912 में आज के दिन नई दिल्ली को देश की राजधानी घोषित करने के लिए वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने हाथी पर बैठकर शहर में प्रवेश किया, और लेकिन इस दौरान एक बम विस्फोट में वे घायल भी हो गए।
Now let's talk about the year 1919. King's proclamation was made that the new reforms of government of India offer some sort of self-government.
1922 में आज के दिन बीबीसी रेडियो ने दैनिक समाचार प्रसारण शुरू किया।
In the year 1947, the transistor was first performed at Bell Laboratories, and in the year 1954, the first successful kidney transplant occurred between two survivors in Boston, Ravi.
और सन 2008 में विख्यात कथाकार गोविंद मिश्र को उनके उपन्यास कोहरे के कैद रंग के लिए हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2008 से सम्मानित किया गया। और अब समय हो गया है कुछ महानुभावों की पुण्यतिथियों, जयंतियों या जन्मदिन के बारे में अपने श्रोताओं को जानकारी देने का। तो इस क्रम में शगुन, आज सबसे पहला नाम है भारत के प्रसिद्ध महापुरुषों में गिने जाने वाले स्वामी श्रद्धानंद जी का। उनका जन्म हुआ था 22 फरवरी 1856 जालंधर पंजाब में, लेकिन निधन हुआ 23 दिसंबर 1926 दिल्ली में। वे ऐसे महान राष्ट्रभक्त सन्यासियों में अग्रणी थे जिन्होंने अपना सारा जीवन वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया था। स्वामी श्रद्धानंद ने स्वराज्य हासिल करने, देश को अंग्रेजों की दासता से छुटकारा दिलाने, दलितों को उनका अधिकार दिलाने और पश्चिमी शिक्षा की जगह वैदिक शिक्षा प्रणाली का प्रबंध करने जैसे अनेक कार्य किए थे। और सबसे बड़ी बात यह थी शगुन कि वे 18वीं सदी में हिंदुओं और मुस्लिमों के सर्वमान्य नेता थे। और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, बात करते हैं किसी जमाने में भारतीय सिनेमा की ख्याति प्राप्त अभिनेत्री और पार्श्व गायिकाओं में से एक रहीं पार्श्व गायिका नूरजहां के बारे में, जिनका जन्म हुआ 21 सितंबर 1926 पंजाब और निधन हुआ 23 दिसंबर 2000 में। उनका पूरा नाम और वास्तविक नाम था अल्लाह वसई। दक्षिण एशिया की महानतम गायिकाओं में शुमार की जाने वाली मलिकाए तरन्नुम नूरजहां को लोकप्रिय संगीत में क्रांति लाने और पंजाबी लोकगीतों को नया आयाम देने का श्रेय जाता है। नूरजहां की गायकी में वो जादू था कि हर उदयमान गायक की प्रेरणा स्रोत स्वर सामग्री लता मंगेशकर ने भी जब अपने कैरियर का आगाज किया तो उन पर नूरजहां की गायकी का कुछ कुछ प्रभाव था। नूरजहां अपनी आवाज में नित्य नए प्रयोग किया करती थीं। अपनी इन खूबियों की वजह से ही वे ठुमरी गायकी की महारानी कहलाने लगी थी।
आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, है कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर सवारे।
संगीतकार गुलाम हैदर ने नूरजहां को केजी मेहरा की पहली पंजाबी फिल्म पिंड दी कुड़ी में बाल कलाकार में एक छोटी सी भूमिका दिलाई थी। 1935 में रिलीज हुई यह फिल्म पूरे पंजाब में हिट रही। वैसे नूरजहां की मुख्य फिल्मों में शामिल हैं यमला जट, खानदान, गांव की गोरी, बड़ी मां, भाईजान, जुगनू, दुपट्टा, फतेह खान आदि, लेकिन फिलहाल सुन लेते हैं पिंड दी कुड़ी का उनका ये गीत।
Now let's talk about a musician, Oscar Peterson. He's a jazz pianist and composer and considered to be one of the greatest jazz pianists of all time. He released more than 200 recordings. He was renowned for his remarkable speed and dexterity while playing the piano, of course, meticulous technique and dazzling swinging style, which is very eminent in the jazz style of music. And for making you all listen to his music prowess, we have this live performance that you're listening in the background, Sea Jam Blues. And now, let's talk about Kali Charan Patnaik, the artistic figure of Odisha, eminent literary and artistic figure of Odisha. He had contributions in the field of Odissi music, dance and theatre. He had significant contributions to development nearly Odia cinema as well. His compositions in various traditional ragas are widely sung in the field of Odissi music and dance.
और अब बात कर लेते हैं रास बिहारी घोष की, जो भारतीय राजनीतिज्ञ, जाने माने अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। आपका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1845, लेकिन आपने इस दुनिया से विदा ली सन 1921 में। वे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों से बहुत ही प्रभावित थे। उनके लिए भारत में ब्रिटिश शासन एक आशीर्वाद था और उन्हें ब्रिटेन पर काफी भरोसा था। सन 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में रास बिहारी घोष स्वागत समिति के अध्यक्ष बने थे। और वक्त हो चला है श्रोताओं से विदा लेने का, तो चलते चलते आज का विचार अपने श्रोताओं के साथ हम साझा करेंगे कि जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। शगुन,
सच अ ब्यूटीफुल थॉट।
जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और शगुन चोपड़ा को आज सवेरे कार्यक्रम यही संपन्न करने के।
ऑल्सो लिसनर्स, स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, आवर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन। वी होप यू हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।